नमस्कार भारत, 20 नवंबर मंगलवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। यमन में संघर्ष खत्म करने की कोशिशों को झटका, सऊदी सेना की हूती ठिकानों पर फिर बमबारी।
Some would say it's on the brink of disaster, on the brink of a catastrophe. I say no, it's not on the brink. It is a catastrophe.
छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 72 सीटों पर मतदान आज।
किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं होगी, पूरे सुरक्षा प्रबंध है। 6 जिले और हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, उनमें व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।
और मुंबई हमलों के बाद से कितनी बदली है भारत की नौसेना।
पिछले 10 साल में भारत देश बहुत आगे बढ़ा है ऑफ टैकलिंग कोस्टल सिक्योरिटी। हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं।
सुनेंगे नौसेना प्रमुख का साक्षात्कार, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, सर्वप्रिया सांगवान के साथ। यमन में सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ने से शांति की कोशिशों को झटका लगा है। पहले हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के बाद ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहे हैं। यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने हूती विद्रोहियों की इस घोषणा का स्वागत भी कर दिया था। ग्रिफिथ्स ने ट्वीट किया कि उन्हें उम्मीद है कि इस युद्ध में शामिल सभी दल संयम बनाए रखेंगे। वहीं हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता दई फलाह अल शमी ने कहा था कि हूती शांति चाहते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र 3 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिस युद्ध में 10,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। मालदीव में गठबंधन सरकार के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नशीद का कहना है कि नई सरकार चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता खत्म करने पर विचार कर रही है। पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके मोहम्मद नशीद ने बीबीसी को साक्षात्कार में कहा कि समझौता बहुत ही एकतरफा था, क्योंकि मालदीव ने चीन से कुछ भी आयात नहीं किया था। उन्होंने कहा कि संसद व्यापार समझौते के लिए जरूरी कानून को मंजूरी नहीं देगी। चीन से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने सीएनएन के पत्रकार जिम अकोस्टा का प्रेस पास बहाल कर दिया है। इससे पहले टेलीविजन नेटवर्क सीएनएन ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार ने पत्रकार जिम अकोस्टा को एक पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि महीने के अंत में उनके प्रेस पास को फिर से रद्द किया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वाद विवाद के बाद व्हाइट हाउस ने अकोस्टा की मान्यता को रद्द कर दिया था, और इस घटना के 2 हफ्ते बाद ये चेतावनी उन्हें दी गई है। शुक्रवार को अमेरिका के एक कोर्ट ने व्हाइट हाउस को 14 दिनों तक अकोस्टा पर प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया, जब तक उनका मामला कोर्ट में सुना जा रहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने ईरान से आग्रह किया है कि वे कैदियों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल ना करें। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने के बाद पहली बार कोई पश्चिमी देश का विदेश मंत्री ईरान के दौरे पर थे। जेरेमी हंट अपने समकक्ष मोहम्मद जावेद जरीफ के साथ बातचीत के लिए वहां गए हैं। हंट ने भी ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के समझौते पर बने रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के विपरीत ब्रिटेन यूरोपीय व्यापारियों को ईरान में व्यवसाय करने का समर्थन करने का प्रयास करेगा, जब तक ईरान अपने समझौते का पालन करता है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जरीफ ने परमाणु समझौते पर ब्रिटेन की वचनबद्धता का स्वागत किया, जिसे JCPOA के नाम से जाना जाता है, लेकिन साथ ही कहा कि ईरान इस प्रतिबद्धता के सबूत देखना चाहता है।
Foreign Secretary Hunt gave me the assurance that the United Kingdom believes in JCPOA, believes in the nuclear deal and believes
विदेश मंत्री हंट ने मुझे आश्वासन दिया है कि ब्रिटेन JCPOA में विश्वास करता है, परमाणु समझौते में विश्वास करता है, और उनका मानना है कि उन्हें समझौते के साथ रहना चाहिए, लेकिन बेशक हमें इस पर कुछ एक्शन होते भी देखना चाहते हैं। ईरान के विदेश मंत्री जरीफ के शब्द। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन में रहने वाले प्रवासी श्रमिक अपने देशों में अपने परिवारों को हर साल $10 अरब से अधिक भेज पा रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मनी ट्रांसफर कंपनियां फीस के रूप में इनसे बहुत ज्यादा पैसा ले रही हैं। परिवारों को भेजे जाने वाला ये धन अक्सर रिश्तेदारों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा ये पैसा नाइजीरिया, भारत और पाकिस्तान में बसे परिवारों को जाता है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एजेंसी यूनेस्को ने ट्रांसफर शुल्क 3% तय करने की बात कही है, क्योंकि उनकी दलील है कि ये विश्व शिक्षा में बढ़ोतरी करेगा। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। दक्षिणी अरब में स्थित देश यमन में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है, जिससे 3.5 साल से जारी संघर्ष को खत्म करने की कोशिशों को झटका लगा है। सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने हुदैदा में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बम बरसाए हैं। ब्यौरा सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
यमन में शांति स्थापित करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों को झटका लगा है। सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच हुदैदा में फिर लड़ाई शुरू हो गई है। सऊदी विमानों ने हूती ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इससे पहले सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन और हूती विद्रोही दोनों लड़ाई रोकने पर सहमत हो गए थे। हूती विद्रोहियों ने कहा था कि वे संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध के बाद ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोक रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने हूती विद्रोहियों की इस घोषणा का स्वागत भी कर दिया था, लेकिन तब किसी को अंदाजा नहीं था कि लड़ाई फिर छिड़ जाएगी। ग्रिफिथ्स ने ट्वीट किया था कि उन्हें उम्मीद है कि इस युद्ध में शामिल सभी दल संयम बनाए रखेंगे। वहीं हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता दई फलाह अल शमी ने कहा कि हूती शांति चाहते हैं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, यमन देश पूरी तरह शांति प्रक्रिया प्राप्त करने के करीब है, क्योंकि यमन के लोगों का प्रतिरोध और जीत के लिए उनकी चाह उन्हें शांति प्रदान करेगी। दुश्मनों की जो आत्मसमर्पण करवाने की इच्छा है, उससे शांति नहीं आएगी, बल्कि यमन के लोगों के खिलाफ और अपराध होंगे और ज्यादा नरसंहार होंगे। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता दई फलाह अल शमी के शब्द। संयुक्त राष्ट्र 3.5 साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। यमन में 2015 की शुरुआत में लड़ाई शुरू हुई थी, जब हूती विद्रोहियों ने देश के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश पर नियंत्रण कर लिया था और राष्ट्रपति अब्दराबू मंसूर हदी को विदेश भागने के लिए मजबूर कर दिया था। विद्रोहियों को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और 7 अन्य अरब देश यमन सरकार को बहाल करने के प्रयास में इस लड़ाई में कूद पड़े। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस लड़ाई में कम से कम 6,660 आम नागरिक मारे गए और 10,560 घायल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, लड़ाई छिड़ने के बाद कुपोषण, बीमारी और खराब स्वास्थ्य के कारण हजारों नागरिकों की मौत हो गई। इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मानवीय सहायता के लिए रास्ता खोलने और बातचीत शुरू करने के इरादे से ब्रिटेन के तैयार किए गए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेसले ने अभी यमन का दौरा किया है और स्थिति को विनाशकारी बताया है।
I met with leaders on all sides of the equation and spoke to mothers and fathers out in the field, so to speak.
मैंने सभी तरह के नेताओं से मुलाकात की और जमीन पर माता पिताओं से बात की। मैं अस्पतालों में बच्चों से बात कर रहा था और यही सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला था, उन बच्चों को देखना। कुछ लोग कहेंगे कि यमन आपदा के कगार पर है, मैं कहूंगा कि नहीं, ये कगार पर नहीं, ये आपदा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बेसले के शब्द। हालांकि सितंबर में शांति पर बातचीत के लिए हूती नहीं आए थे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र परिषद में संदेश पहुंचा दिया था कि यमन की लड़ाई में शामिल सभी पार्टियां शांति पर बातचीत करने को तैयार हैं। ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस साल के आखिर तक बातचीत हो जाएगी, लेकिन फिर से लड़ाई छिड़ने के बाद अब इस पर भी संशय के बादल हैं।
ब्यौरा सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में अब से कुछ ही देर बाद 72 सीटों पर मतदान शुरू होने वाला है। राज्य के लगभग 1.5 करोड़ मतदाता भाजपा, कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बसपा गठबंधन समेत दूसरे दलों के 1,079 उम्मीदवारों के कामकाज का फैसला करेंगे। आज जिन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, वहां कई हाई प्रोफाइल नेता भी चुनावी मैदान में हैं। रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 में से 18 सीटों पर इस महीने की 12 तारीख को मतदान हुआ था। अब बची हुई 72 सीटों पर अब से कुछ ही देर बाद मतदान शुरू होने वाला है। कई इलाकों में चुनाव करवाने वाली टीम को 2 दिन पहले ही भेजा जा चुका है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू के अनुसार कुछ इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से मतदान दल को हेलीकॉप्टर से भी भेजा गया है।
हेलीकॉप्टर से भी इनको हेली ड्रॉपिंग किया गया है और इनका वापसी भी हेलीकॉप्टर से तय है। सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन हेतु सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
आज मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के जिन 19 जिलों में मतदान होना है उनमें से 6 जिले गरियाबंद, बालोद, बलरामपुर, धमतरी, कबीरधाम और महासमुंद देश के सर्वाधिक माओवाद प्रभावित जिलों में शामिल हैं। ऐसे में इलाकों में सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि राज्य में नक्सल ऑपरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक डीएम मौस्ती का कहना है कि सभी प्रभावित जिलों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं होगी, पूरे सुरक्षा प्रबंध है। 6 जिले और हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, उनमें व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस कंपनीज भेजी गई हैं, एसटीएफ हैं, कोबरा है, उन सबको लगाया गया है।
आज होने वाले मतदान में जिन उम्मीदवारों के कामकाज का फैसला मतदाता करेंगे उनमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भूपेश बघेल, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के अलावा रमन सिंह सरकार के 12 में से 9 मंत्री भी शामिल हैं। जनता किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है इसका पता तो 11 दिसंबर को ही चलेगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आने वाले हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के अंदरूनी संघर्ष में अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम भी आरोपों की श्रेणी में आ गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने याचिका दाखिल कर दावा किया कि अजीत डोभाल ने इस मामले की जांच में दखलअंदाजी की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जाँच में डोभाल ने हस्तक्षेप किया। आज इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले पर और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी ने सुप्रीम कोर्ट पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती से संपर्क किया। सुनिए।
सीबीआई के जो सीनियर आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर है मनीष कुमार सिन्हा जी, और ये सिन्हा जी जो है वो बहुत सारे केसेस में लीड कर रहे थे, प्रोब कर रहे थे सीबीआई की बहुत सारे केसेस, जैसे कि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ हो या फिर और बहुत सारे केसेस हो, नीरव चौकसी हो या फिर इसके केसेस हो, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे कल। और ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये मेंशन किया था कि उनका जो ट्रांसफर हुआ है नागपुर वो अनजस्ट है और आर्बिट्ररी है, क्योंकि उनका जो तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, वो बहुत गलत तरीके से किया गया है और इसको जो ट्रांसफर ऑर्डर को रोका जाए, यानी कि केंद्र सरकार को ये ऑर्डर दिया जाए कि उनकी जो ट्रांसफर हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। और इन्होंने कल ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और दो जज जो बैठे हुए थे कोर्ट नंबर 1 में, जस्टिस संजय किशन कौल और के एम जोसेफ साहब के कोर्ट में मेंशन किया था कि उनकी भी पक्ष सुना जाए, उनकी भी अर्जेंट हियरिंग की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कल अर्जेंट हियरिंग की जो तारीख थी उन्होंने दिया नहीं, बोला कि हम ड्यू कोर्स में सुनवाई करेंगे। ये सुनते हुए कोर्ट ने ये बोला कि अर्जेंट हियरिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जब भी रजिस्ट्रार इसको हियरिंग पे लेगी तब हम सुनवाई करेंगे। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो कोर्ट को लगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है, इसलिए इनको ड्यू कोर्स ऑफ हियरिंग में सुना जाए।
मोहंती जी, ये बताएं कि पहले ही सीबीआई के 2 बड़े अधिकारी इस मामले में जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम इसमें शामिल हो गया है। इनका नाम शामिल होने के बाद इस मामले पर अब क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखता है?
देखिए, मैं एक बात लार्जर पर्सपेक्टिव पे आपको बोलूंगा कि लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो जो है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इनकी जो इंडिपेंडेंस है इसमें थोड़ा सा सवाल या निशान लगा दिया है, क्योंकि अगर सीबीआई में 2 ऑफिसर के बीच लड़ाई हो रही तो आप कह सकते हैं कि एजेंसी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट अब क्या दखल दे सकती है, नहीं दे सकती है, आज ये देखने वाली बात रहेगी। सबसे बड़ी ये बात रहेगी कि सीबीआई को क्या जो आलोक वर्मा है डायरेक्टर थे उनको क्या रीइंस्टेट सुप्रीम कोर्ट कर पाएगी, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन है अभी फिर से जांच करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें इन्वेस्टिगेशन चलेगी या क्या चलेगी, सारा कुछ दारोमदार अभी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 यानी कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और 2 जज के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से आज हियरिंग होगी।
आज इस याचिका पर सुनवाई के अलावा इस मामले पर और क्या कुछ सामने आने की आपको उम्मीद नजर आती है?
देखिए, मुझे लग रहा है इसमें सब कुछ सुनवाई होगी, सीबीसी की तरफ से भी बहस जारी रहेगी, इसमें जो एजी है अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो सारा कुछ दारोमदार अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सबकी बहस अभी सुनवाई करेगी सुनेगी, तो सब कुछ लग रहा है कि आर्गुमेंट के ऊपर बहस के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से कौन कौन किसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट में बहस करेगी।
वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच बीते कुछ दिनों में कई मतभेद सामने आए हैं। कभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य आरबीआई की स्वायत्तता की बात करते हैं तो कभी वित्त मंत्री लिक्विडिटी की कमी पर सवाल उठाते हैं। इन्हीं मतभेदों के बीच कल आरबीआई के अधिकारियों और सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के सदस्यों के बीच 9 घंटे लंबी बैठक हुई। क्या हासिल रहा इस बैठक का, नवीन नेगी ने पूछा बीबीसी के कारोबार मामलों के संवाददाता समीर हाशमी से।
जो आप पिछले कुछ दिनों में खबरें आ रही थी कि काफी मतभेद हैं सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच, उसमें 5-6 मुद्दे थे, उसमें से 2-3 मुद्दों के ऊपर आज डिस्कशन हुआ। और मीटिंग के बाद जो एक स्टेटमेंट इशू हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि एक जो बहुत बड़ा मुद्दा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ महीनों में जो बैंक्स हैं उनके ऊपर काफी सख्त नियम लगा दिए थे जो ये पैसा देते हैं व्यापारियों को, उसके ऊपर उस मुद्दे के ऊपर ये तय किया गया है कि जो छोटे और मध्यम स्तर के जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ राहत दी जाएगी उधार देते वक्त, लोन देते वक्त, क्योंकि उन लोगों के लिए काफी परेशानी हो रही है। तो जो 25 करोड़ तक जिनके उधार हैं उसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। एक दो और जो इश्यूज थे वो भी डिस्कस किए गए हैं, लेकिन बाकी जो बड़े मुद्दे थे 4-5 जो 3 मुद्दे थे जिनके ऊपर काफी चर्चा थी पिछले कुछ दिनों से, वो जो है अगले महीने की मीटिंग में अब डिस्कस किए जाएंगे जो कि 14 दिसंबर को होगी।
इस लिहाज से भी इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि आरबीआई गवर्नर के भविष्य का फैसला इस बैठक में हो सकता है, तो क्या इस मसले पर कोई बातचीत हुई, कोई बातें निकल के आई इस बारे में?
हाँ, काफी अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर जो सरकार के जो अधिकारी हैं बोर्ड पे वो ज्यादा दबाव डालेंगे आरबीआई के ऊपर, तो जो है उस सूरत में जो है आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल शायद रिजाइन कर दें अगर उनके ऊपर दबाव ज्यादा बनाया जाएगा, यानी आरबीआई के ऊपर ज्यादा दबाव बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उससे ये लगता है कि जो फैसले लिए गए हैं उसमें कोई ऐसा दबाव नहीं डाला गया है उस तरह का आरबीआई के ऊपर जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था। इसीलिए ये मीटिंग भी जो है 9 घंटे चली है, सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 7:30-8 बजे खत्म हुई, यानी कि इन 2-3 मुद्दों के ऊपर काफी विस्तार में चर्चा हुई है और दोनों ने मिलके बजाय इसको थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने के बजाय इन्होंने जो मिडिल पाथ है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है।
क्या आने वाले वक्त में आरबीआई के जो कामकाज करने का तरीका है उसमें कुछ बदलाव देखता हुआ नजर आता है क्या?
ऐसा लगता तो नहीं है आज की मीटिंग के बाद कि अभी उस पर कोई चर्चा की गई है, ना इन्होंने कुछ बोर्ड की मीटिंग से निकल के आया है कि इस पर कोई चर्चा आगे होगी। हाँ, पिछले कुछ दिनों में ये बात जरूर चल रही थी कि सरकार ये चाहती है कि जो इटोनमी है आरबीआई की वो बोर्ड को ज्यादा पावर दी जाए, यानी ज्यादा ताकत दी जाए आरबीआई बोर्ड को फैसले लेने की। अब तक अगर आप देखें तो आरबीआई जिस तरह काम करती है वो इस तरह करती है कि एक आरबीआई बोर्ड होता है और फिर आरबीआई अधिकारी होते हैं जिसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ आरबीआई गवर्नर होता है। जो बात पिछले कुछ दिनों में चल रही थी वो ये चल रही थी कि अगर सरकार ये चाहती है कि आरबीआई बोर्ड को ज्यादा ताकत मिले ताकि वो दबाव डाल सके आरबीआई के ऊपर अगर वो कुछ सरकार की बातों को नहीं मानती है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आज की बात बोर्ड की मीटिंग से नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है।
ये थे बीबीसी के कारोबार मामलों के संवाददाता समीर हाशमी। अपने अतिवादी बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले राजस्थान से भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी की ओर से टिकट काटे जाने से नाराज हैं। अब आहूजा जयपुर में सांगानेर सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
कभी गोरक्षा और कभी हिंदुत्व को लेकर जब भी वे बोलते अखबारों की सुर्खियां बनती। अलवर जिले में रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी ने 4थी बार मौका देने से इनकार कर दिया। आहूजा को यह बुरा लगा और उन्होंने इसे तानाशाही बताते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया। आहूजा ने बीबीसी से कहा वे नहीं जानते पार्टी ने उनके साथ यह सलूक क्यों किया।
पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया यह मैं भी नहीं समझ पाया, क्या वजह रही, क्या कारण रहा, और वजह कारण बताते तो शायद मैं चुनाव लड़ने की सोचता भी नहीं, क्योंकि मैं कितना अग्रेसिव हूँ, डैशिंग नेचर का हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला लीडरों में भी हूँ, हार्डकोर का हिंदू नेता हूँ, गोरक्षा के लिए संघर्ष करता हूँ, पर मैं 2 सेकंड में कन्विंस होता हूँ। कारण बता देते कि इस वजह से आपका टिकट काट रहे हैं, सिटिंगें मिले हूँ, न मुझे कारण बताया गया, वजह बताई गई, न मुझे कन्विंस किया गया, अचानक टिकट काट दिया, जो अन्याय है। अन्याय के कारण मुझे आश्चर्य हुआ, दुख नहीं हुआ। अब संदेश तो यह जाता है हिंदुत्वों की सरकार होते हुए भी उन्होंने कुठाराघात किया, मेरे साथ मेरे ऊपर कुठाराघात किया।
आहूजा अब संभल संभल कर बोलते हैं, तनी हुई भ्रकुटी, घनी काली लंबी काली मूंछ और गले में केसरिया दुपट्टा डाले रहने वाले आहूजा सांगानेर में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। वे कहते हैं अलवर में उनकी गैरहाजिरी में गोरक्षा अभियान को नुकसान पहुंचेगा।
जो मेवात का बेल्ट है हमारा, जो मैंने एक दीवार बन के खड़ा हुआ था, उसमें नुकसान हो, सारे मेवों को भी मैं दोषी नहीं ठहराता। आपराधिक प्रवृत्ति के जो मेव हैं, या हिंदुओं में भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्योंकि मैं अपराधियों के लिए काल हूँ, बहुत नुकसान होगा। ये बात सही है, जिस अभियान को गोरक्षा का और गो तस्करी के खिलाफ, वहाँ मेवात में सिंथेटिक दूध दूध बनता है, वहाँ पर जो लव जिहाद का चल रहा है, वहाँ जो अवैध खनन का काम है, वहाँ गो तस्करी गोकशी का है, उस अभियान जो मैं विरोध कर रहा था और मैंने उसे सारे को रोका हुआ था एक हिमालय पर्वत की दीवार की तरह से, उसमें अब कोई क्या स्थिति होगी, वो नुकसान हो सकता।
विधायक आहूजा की नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण स्वरूप हैं और विष्णु का अवतार हैं, लेकिन आहूजा को यह जरूर लग रहा होगा कि उनके आराध्य उम्मीदवारी के मामले में इस श्रद्धालु की मदद नहीं कर पाए। नारायण बारेठ, BBC जयपुर।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया सांगवान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए सर्वप्रिया, क्या कहते हैं आज के अखबार?
कुलदीप, हमारी राजनीतिक पार्टियां और आम लोग भी विधानसभा चुनावों की हवा पहचानने में व्यस्त हैं, वहीं देश की जो असली हवा है उसकी परवाह कोई कर ही नहीं रहा, जो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी को, चाहे वो किसी धर्म से है, जाति से है या किसी आर्थिक तबके से है, सबको बराबर प्रभावित कर रहा है। और अब जो अखबार हैं वो उसको प्रमुखता से छापने भी लगे, और हम अब ये हमें भी इसके बारे में सभी लोगों को प्रमुखता से बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। कल जब मैं पढ़ रही थी तो जो दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर था वो 326 पे उसका इंडेक्स पे उसका स्तर था, और आज वो 330 हो गया बढ़ के, उससे एक दिन पहले 311 था। तो सोचिए हर रोज ये बढ़ता जा रहा है।
हिंदुस्तान अखबार ने इसी में लिखा है कि दिल्ली NCR में हवा की गति कम होने के कारण सोमवार को प्रदूषण बढ़ा है, तो हवा की जो गति थी वो घटी है, इसकी वजह से वो 330 के स्तर को पार कर गया।
और इसके अलावा ये भी है कि जो एक्शन प्लान बनाया गया है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को बेहतर करने के लिए, उसमें भी जो RTI डाली गई, तो उसमें रेल कॉरपोरेशन को RTI डाली गई, लोक निर्माण विभाग यानी PWD को और दिल्ली पुलिस को RTI लगाई गई, और उनसे पूछा गया कि इसके बारे में क्या हो रहा है, इस एक्शन प्लान क्या है, और सब ने यही जवाब दिए कि ये उनका काम नहीं। जैसे PWD से सड़कों की सफाई पर स्वीपिंग पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके विभाग से संबंधित नहीं है। DMRC से पूछा गया कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है। तो ये जो खबर जो मैं पढ़ रही थी दिल्ली जागरण से है, दैनिक जागरण से। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी पहले पेज पर ये छापा है कि जो चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे आप घर के बाहर हैं, जो जितनी स्टडीज़ हैं, जो शोध हैं, वो ये कहते हैं कि दोनों ही हालत में आपकी जो हालत है वो ख़राब है, प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है। आप अंदर रहने से ये नहीं है कि आप सेफ हो जाएंगे। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर छापा है कि जो दिल्ली वासियों की जो प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों की जो एवरेज लाइफ है वो 10 साल कम हो रही है। तो सोचिए जो पूरा का पूरा अब प्रमुखता से जो अखबार छाप रहे हैं, हमें भी इस पर बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस पर मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें जयपुर में जो पुलिस ट्रेनिंग हो रही है व्हाट्सएप के लोगों के साथ, उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं जो पुलिस के लोग हैं, जो IT सेल के लोग हैं, वो बार बार उनसे पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के लोगों से कि कैसे सोर्स को कैसे पता लगाया जाए। मान लीजिए किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई है तो उसके सोर्स का कैसे पता चलेगा। लेकिन ये सोचिए कि बार बार जो व्हाट्सएप कंपनियाँ हैं वो यही कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है, वो नहीं बता सकती हैं।
बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए सर्वप्रिया सांगवान।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम, BBC हिंदी।
अब आज का विशेष साक्षात्कार। आज से 10 साल पहले साल 2008 में नवंबर के महीने में समुद्र के रास्ते कुछ चरमपंथी मुंबई में घुसे थे और एक बड़े हमले को अंजाम दिया था। भारत ने इस हमले के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। उस हमले का असर आज तक भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर दिखता है। मुंबई हमलों के वक्त भारतीय नौसेना की तैयारियों और समुद्री सीमा की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े किए गए थे। अब 10 साल बाद भारतीय नौसेना इस तरह के हमलों के लिए किस हद तक तैयार है और इसके अलावा समुद्री सीमा पर चीन के विस्तार का जवाब किस तरह देखा जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर BBC संवाददाता जुगल पुरोहित ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लंबा से बात की।
पिछले 10 साल में भारत देश बहुत आगे बढ़ा है ऑफ टैकलिंग कोस्टल सिक्योरिटी। हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मल्टीपल एजेंसीज जो इस मुद्दे पे डील करते हैं आर बेटर इंटीग्रेटेड। जो हमारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है बिटवीन द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड हैज़ बीन सेट अप। ये इसके बारे में कोस्टल सिक्योरिटी की रेगुलर एक्सरसाइज होती हैं डिफरेंट कोस्टल स्टेट के साथ। So we are better prepared.
अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि आज भी इतने सारे प्रयासों के बाद भी लगभग 2.2 लाख फिशिंग बोट्स ऐसे हैं जो अंडर 20 मीटर्स के साइज के हैं, और उस कारण आज भी जो हमारे रडार्स सिस्टम्स वगैरह जो आपने कहा इंस्टॉल किए गए हैं उनके नज़र के नीचे है, वो अभी भी उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनमें सिस्टम्स AIS वगैरह सिस्टम्स नहीं हैं। तो 10 साल के बाद भी सर इस तरह की सिचुएशन हम क्यों फेस कर रहे हैं एडमिरल लंबा?
पिछले 10 साल में एक तो हुआ है कि सारे फिशिंग बोट जो भी उनका साइज हो या 20 मीटर से छोटी उनकी सबकी रजिस्ट्री हो गई है। एक बायोमेट्रिक आई कार्ड सारे फिशरमैन के लिए बन गए हैं और इशू हो गए हैं। दूसरा मुद्दा आपने बताया है कि एक AIS ट्रांसपॉन्डर जो फिट करना है, इसमें हम इसरो के साथ हमने काम किया और एक पायलट प्रोजेक्ट अभी गुजरात और तमिलनाडु में जारी है वेयर अ स्मॉल लो कॉस्ट AIS ट्रांसपॉन्डर बन गया और 1000 फिशिंग बोट्स में फिट हो गए हैं। इसकी सैटेलाइट से ट्रैकिंग होती है और ये हमारा जो इंफॉर्मेशन IMAC सेंटर में इसकी इनपुट आती है। एक तो ये है, दैट इज़ AIS सिस्टम। दूसरा है रेडार चेन पूरे इंडिया के कोस्ट में। फेज़ 1 इज़ ऑपरेशनल, फेज़ 2 इज़ नाउ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। सो अगर AIS इंफॉर्मेशन नहीं आती, दी स्मॉल फिशिंग बोट्स कैन ऑल्सो बी पिक्ड अप ऑन द रेडार।
ग्वादर जो पाकिस्तान का एक पोर्ट है, क्या ग्वादर में आपने कोई सैनिक गतिविधियों को ऑब्जर्व किया है, और अगर किया है तो वो किस तरह की रही है वहाँ पर?
आज तक वहाँ कोई सैनिक गतिविधि पीपल्स लिबरेशन नेवी और चाइनीज नेवी की नहीं देखी गई है। और जो स्टेटमेंट चाइना ने भी बुलाया है ग्वादर के बारे में, दिस इज़ अ कमर्शियल पोर्ट एंड अ कमर्शियल एक्टिविटी। सो आज तक वहाँ कोई नेवल एक्टिविटी चाइनीज की ग्वादर में नहीं मॉनिटर करी गई है।
चीन ने, आपने कहा था कि साउथ चाइना सी में एक तरह से स्टेटस को चेंज किया है अलग अलग उनकी गतिविधियों से, क्या आप इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि चीन इंडियन ओशन में भी स्टेटस को कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहा है?
2008 से चीन की नेवी परमानेंटली इंडियन ओशन में डिप्लॉयड है और किसी भी समय में 6 से 8 जहाज उनके इंडियन ओशन में डिप्लॉय होते हैं। जो आप कंपेयर कर रहे हैं साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन और चेंज ऑफ स्टेटस को, वैसे तो कोई चेंज ऑफ स्टेटस को नहीं हुआ है कि देर आर परमानेंट मिलिट्री फैसिलिटीज इन द इंडियन ओशन। उनकी पहली ओवरसीज बेस जिबूती में बनी गई है, बट आई विल नॉट से दैट द स्टेटस को इन द इंडियन ओशन हैज़ बीन चेंज्ड।
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा। और अब खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। भारत का ऑस्ट्रेलियन टूर शुरू होगा 21 नवंबर से। इस श्रृंखला में T20 मैच शामिल हैं, टेस्ट मैच शामिल हैं, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस श्रृंखला की शुरुआत होगी T20 मुकाबले के साथ। इस दौरे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा ऑस्ट्रेलिया टीम में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी की हो रही है। दोनों खिलाड़ी इसी साल मार्च में हुए चर्चित बॉल टैंपरिंग विवाद की वजह से प्रतिबंध झेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अधिकारी इस दौरे की टेस्ट सीरीज से पहले स्मिथ और वार्नर पर लगे प्रतिबंध को कम करने के लिए अंतिम बार विचार विमर्श करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बात ICC विमेंस वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप की। 22 नवंबर को होगा पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जो होगा ऑस्ट्रेलियन और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच। वहीं दूसरी तरफ मुकाबला होगा 23 नवंबर को इंग्लैंड और इंडिया के बीच। और जाने से पहले बात टेनिस की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने ATP फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हराया और ये खिताब अपने नाम किया। 21 वर्षीय अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने नोवाक जोकोविच को 6-4, 6-3 से हरा दिया। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
बीबीसी समाचार। यमन में सऊदी की अगुवाई वाले गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ने से शांति की कोशिशों को झटका लगा है। मालदीव में गठबंधन सरकार के वरिष्ठ नेता मोहम्मद नशीद का कहना है कि नई सरकार चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता खत्म करने पर विचार कर रही है। अमरीका के व्हाइट हाउस ने सीएनएन के पत्रकार जिम एकोस्टा का प्रेस पास बहाल कर दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेरेमी हंट ने ईरान से अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के समझौते पर बने रहने का आग्रह किया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।